તારીખ 13/2/1989 પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 103 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 88
फिर भी उनकी भावना में तो ऐसा होता है कि मैं ऐसा मुनि कहूंगा, सौराष्ट्र में तो ये दिगंबर संप्रदाय इतना प्रसिद्ध नहीं था, फिर भी 90-100 साल पहले श्रीमद राजचंद्र जी ने वो भावना अपूर्व अवसर के कार्य काव्य में व्यक्त की है। नग्न भाव मुंड भाव सुभाषता अदंत भोवन आदि परम प्रसिद्ध जो 28 मूल परम प्रसिद्ध है ऐसा नाम। वहां तो समाज में वो बात नहीं चलती थी, समाज में तो सब पीताम्बर वगैरह का चलता था, परम प्रसिद्ध का 28 मूल गुण तो
परम प्रसिद्ध है।
जिनागुण के विषय बिल्कुल परम प्रसिद्ध है। मेरी ऐसी भावना उस वक्त में अपने लिए वो भावना भाई थी, जब अपने लिए वो भाव है तो फिर उपदेश में या कहने के लिए कोई दूसरी बात हो, ये बात कैसे संभव हो,
नहीं सकता।
शंका करते थे वो श्वेतांबर को मानते थे या दिगंबर को मानते थे, दिगंबर मुनि की तो भावना है थी। और वो फिर श्वेतांबर को ठीक कहें, अच्छा कहें, बराबर कहें, यथार्थ कहें, वो बात कहाँ से करें। इधर गुरुदेव भी अपनी भावना को कैसे शब्दों में देते हैं, ओ मैंने महिमा की है, कैसे हैं, कितना पुरुषार्थ है, कितना प्रचुर स्वसंवेदन है, कितना आनंद है। छठे मूल स्थान में भी पंचमहाव्रत 28 मूल गुण का विकल्प हो, फिर भी परिणति में तो ज्ञान चेतना का करंट चलता है, ज्ञान चेतना कहीं चली नहीं जाती। शुद्धोपयोग के काल में ज्ञान चेतना के विषय में कोई विवाद नहीं हो सकता, क्योंकि जो उपयोग शुद्धात्मा में मग्न है, लीन है, वहां तो कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है। लेकिन समीप दृष्टि मुनि का उपयोग बाहर चलता है, मन वचन काया और दूसरे निमित्त के अनुसार उन लोग को शंका होती है कि इस वक्त जो है वो नान अपना आत्मा को आराधन नहीं करता है, ज्ञान में संग छोड़ दिया परमात्मा का, इसलिए ज्ञान की आराधना माने है, श्रद्धा की आराधना है, चारित्र की आराधना है, लेकिन ज्ञान की आराधना मानी है, ऐसी बात नहीं
है।
ज्ञान चेतना चली नहीं जाती, चतुर्थ गुण स्थान से बारहवा गुण स्थान तक ज्ञान चेतना बताई है, फिर केवल ज्ञान है, श्रुत ज्ञान का ही अवयव है ज्ञान चेतना, सम्यक श्रुत ज्ञान, वो ज्ञान चेतना चालू ही चालू रहती है। महात्मति श्रुत दो ही ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं हुए उसके पहले
मते श्रुत
नाम चेतना ना होती है
और करंट चालू,
वो ज्ञान चेतना का और सुख का करंट चालू है, वो करंट इतना चालू है कि वो शरीर और दूसरे प्रतिकूल संयोग उपद्रव जो उपसर्ग परिसर रूप में हो उसको गिनते नहीं, वहां वो कोई प्रवृत्ति चेष्टा नहीं करते कि ये प्रतिकूलता को दूर करे और अपना देह का संरक्षण करे, ऐसा नहीं होता। इसका कारण क्या, उपयोग तो बाहर गया, उपयोग तो चलने में बैठने में सोने में खाने में लगता है, बातचीत करने में भी लगता है, फिर भी वो उपयोग की मर्यादा है, क्योंकि प्रतिकूलता को दूर करे मेरा और अनुकूलता को ले आवे, ऐसा कोई प्रयत्न कोई चेष्टा मर्याद नहीं करे। क्यों नहीं करे कि ऐसा सुख का करंट चलता है, ऐसा सुख चलता है कि अगर जो दैहिक सुख की चेष्टा करे तो वो सुख चला जाए, इसलिए वो बाधक है, ऐसे परिणाम मुनिराज के लिए
बाधक
है, दुखरूप होते हैं। ये तर्क करते हैं कि थोड़ा सा वस्त्र रख लिया तो क्या हुआ, उसमें क्या आपत्ति है, तो कहते हैं कि वही वस्त्र ग्रहण करने का परिणाम वही आपत्ति है, वही दुख भाव है। सुख के लिए संसारी लोग वस्त्रादि ग्रहण करते हैं, अनुकूलता के साधन जुटाते हैं, लेकिन मुनिराज को तो यही दुख का परिणाम दुखरूप परिणाम है, ये अपने अंतर के सुख का घातक हो जाता है, इसलिए ऐसा प्रयत्न करना यही इनके लिए दुख है। ऐसा छठे गुण स्थान में भी सुख का करण चलता है कि जिस सुख के वशात वो कोई अनुकूलता प्रतिकूलता के माथा कोड़े में सिर कोड़े में जाते हैं, जा नहीं सकते, उतना वहां चलता है। साधना में तो फिर कहने का सवाल नहीं, वो तो शुद्धोपयोग में है, निर्विकल्प ध्यान में है, आत्मगुण स्थान में तो कोई प्रवृत्ति वैसे ही बुद्धिपूर्वक होती नहीं। ऐसी दशा मेरी को होवे ये भावना का विषय रहता है, ओ कह करके ओ में वो बात आती है, ओ कहते हैं ओ में वो बात है, मुझे ऐसा कैसा कब हो, ऐसी बात है। जी दृढ़ हिंदी में
सम्यक दृष्टि से करंट चालू हो रहे
द्रविलिंगी ने तो कर्म चेतना ने कर्म फल चेतना थे, तो ज्ञान चेतना थे, सम्यक दृष्टि पर उन्हीं दशा धारण करे। पांचवा गुण स्थान वाला को उन्हीं दीक्षा अंगीकार करेंगे, गुणस्थान ऊपर न आवे तो ज्ञान चेतना है, पर इतनी उग्र परिणति नहीं, જેટલી મુનિ દશામાં ઉગ્ર પરિણત છઠ્ઠા ગુણ સ્થાનને યોગ્ય શુદ્ધિની થઈને હોય, કેમ કે ત્યાં કષાય ત્રણ નાશ પામે છે. કષાયના અભાવમાં જે સુખ શાંતિની દશા છે, કષાયના સદભાવમાં દુઃખ કી દશા, પણ કષાય કે સદભાવ સદભાવ મેં દુઃખ ઓર અભાવ મેં શાંતિ હો સુખ, એ વાત. इसलिए कहते हैं कि अडोल दिगंबर वृत्ति को धारण करने वाले डोलते नहीं, दोलायमान नहीं होते, विचलित नहीं होते. अडोल मैंने अविचलित, ऐसे अविचलित स्थिति में वो रहते हैं, विचलित नहीं होते, मन में वास करते हैं, बस्ती में निवास नहीं करते हैं. कोई बस्ती से प्रयोजन नहीं है मुनिराज को, बस्ती से कोई प्रयोजन
नहीं है, नहीं.
कोई समाज का कोई काम नहीं करना है, समाज की कोई बात का वो ध्यान नहीं देते, ऐसे ऐसे विकल्प उनको नहीं है. उपदेश विकल्प हो गए तो उपदेश चले बस आत्मा का, इससे ज्यादा आगे कोई सामाजिक प्रवृत्ति में मुनिराज पड़ते हैं
नहीं.
इसलिए वो जंगल में बसते हैं, जंगल के बसने का यही कारण है. जंगल में भी नीरव स्थान में जाते हैं,
नीरव स्थान
जहाँ आवाज न हो,
एकांत स्थान,
एकांत स्थान में भी सकते हैं. असंग दशा बाह्य में, असंग दशा अंतरंग में भी, असंग दशा असंग तत्व को साधने वाले मुनिराज असंग दशा में विचरते हैं. वनवास वस्ती में जीते, वस्ती में रहना उनको अनुकूल नहीं पड़ता. वो अपने से नीचे गुणवानों अवगुणी का संग नहीं करते, अवगुणी इनको संग करने आते हैं तो उपदेश का विकल्प उठे तो उपदेश कर दें, नहीं विकल्प उठे तो नहीं करें, मौन रह जावे. और पात्र हुए तो उनकी मौन दशा से भी उनको उपदेश मिले, ऐसी इनकी
मौन दशा,
मौन दशा भी इतनी आत्मा का गुण को प्रकाश करने वाली, प्रसिद्ध करने वाली है. आत्मा की शांति इनके दर्शन मात्र से ही मिलती है. तो उनके दर्शन से भी दर्शन करने वाले धन्य हो जाते हैं. तो वो ये तो चलते फिरते सिद्ध हैं, क्या कहते थे, चलते फिरते सिद्ध हैं. सिद्ध दशा तो आगे जाके होंगी, लेकिन जैसे पिता की मुखाकृति के अनुसार पुत्र की मुखाकृति होती है, वैसे सिद्ध परमात्मा के अनुसार, गुजराती में उसको अनुसार कहते हैं, मुझे नहीं क्या कहते पता है, जैसे मुखाकृति जो सिद्ध समान दिखते हैं, सिद्ध चलते फिरते नहीं होते, लेकिन मुनिराज चलते फिरते सिद्ध हैं. सिद्ध का दर्शन करना हो
चलते फिरते सिद्ध होते चरणों में शीश वाले,
ऐसा बहुत महिमा करते थे गुरुदेव अपने प्रवचन में. जहाँ भी मुनि दशा का स्मृति होती थी, उल्लेख आता, बहुत भक्ति करता
था, बहुत आनंद आता था. आनंद
मन में बसने वाले होते हैं और अपने चिदानंद स्वरूप आत्मा में डोलने वाले मैंने मस्त रहने वाले, डोलने वाले मैंने
मस्त रहने वाले,
मस्त रहने वाले ऐसे मुनिवर जो छठे सातवें गुण स्थान में आत्मा के अमृत कुंड में, दोनों गुण स्थान में आत्मा के अमृत कुंड में मग्न हुआ जलते हैं, क्षण में छठवें में आते, क्षण में सातवें में आते, अमृत कुंड में मग्न है. बहुत ठंडी हो, बहुत गर्मी हो, या कुछ भी परिश्रम हो, उपसर्ग हो, उसमें वो है ही नहीं, खुद आत्मा के अमृत कुंड में मग्न है बस। सामान्य दशा विशेष दशा बाहर की कोई भी परिस्थिति हो सामान्य विशेष, उसमें अमृत कुंड में मग्न रहते हैं, जुड़ते हैं। ऐसे उनके जो अवतार हैं वो सफल है, ऐसे मुनिराज का मनुष्य भव में आना बहुत सफल है। वो केवल ज्ञान लेने के लिए तैयार हो गए हैं, केवल केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे हैं, चढ़ जाएंगे ऊपर, जैसे तलेटी में से ऊपर जाते हैं, चढ़ जाएंगे ऊपर, कभी भी श्रेणी लगा देंगे तो अंतर्मुख में
केवल ज्ञान,
केवल ज्ञान हो जाएगा। इसलिए उनके अवतार सफल हैं, मनुष्य भव पाया और मुनि दशा तक से आराधना की, धन्य है उनके इस अवतार को, भाव को कि वहां तक वो पहुंचे। उनके अवतार सफल हैं, ऐसे संत मुनिवर भी वैराग की बार भावना, बार भावना अनित्य भावना, आश्रम भावना, अनित्य भावना, एकत्व भावना,
संसार,
संसार भावना, धर्म भावना, लोक भावना, ऐसे बार भावना है, ये वैराग्य की जननी ऐसे कहा है, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। यानी कहीं भी रस नहीं आवे, वैराग्य में अपने परिपूर्ण आत्मा में इतना रस है कि इस रस के वसात कहीं भी और जगह उनको रस आता
नहीं।
पद्म ब्रह्मधारी देव, भगवान पद्म ब्रह्मधारी देव नियम सार में कहते हैं कि वैराग्य के महल के शिखर के शिखामणि है मुनिराज, है वैराग्य के महल के शिखर के
शिखामणि,
शिखामणि है, इतने बहुत वैराग है, कहीं भी वो रक्त नहीं होते, अनुराग नहीं होते। ऐसे संत मुनिवर भी वैराग्य की बाहर भावना भा करके वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हैं, विकल्प के काल में वस्तु स्वरूप का चिंतन चलता है तो उसमें बार भावना आदि इस प्रकार के चलते हैं, जो बार भावना में विषय आते हैं अलग अलग, ऐसे विचार विकल्प चलते हैं उनके लिए। देह का चिंतन नहीं चलता है और दूसरे को संयोग का भी चिंतन
नहीं करता,
जिसको संयोग में रहा हुआ देह की दरकार नहीं, इनकी उपेक्षा है, उनमें रस नहीं, देह के प्रति जिसको वैराग्य है, उनको दूसरे क्षेत्र में अलग से अलग संयोग वियोग हो गए उसकी दरकार क्या, क्यों करें? जो देख ही नहीं दरकार करते हैं वो दूसरे संयोग की दरकार क्यों करेंगे?
करेंगे नहीं,
कोई कहने की बताने की आवश्यकता ही नहीं कि जो देह की दरकार जिसने छोड़ी हो वो दूसरे कोई दरकार करें, कोई सवाल पैदा
नहीं होता,
नहीं होता। बंदे चक्री तथा भी नमड़े मान, जो चक्रवर्ती की सेना निकले वंदन करने को आप सामने भी नहीं देखा, अपने ध्यान में मस्त रह जाए, पता चले तो भी ध्यान देने का उसको कुछ आवश्यकता नहीं दिखती। ये राजा है, बड़ा पुण्यशाली है, लोक में उसका बड़ा पद है, जरा उनको मैं आशीर्वाद तो दूं, उसको अच्छा लगेगा, चक्रवर्ती को अच्छा लगे ऐसा नहीं करे कि नहीं, कुछ नहीं। इंद्र आते हैं, चक्रवर्ती क्या इंद्र भी आ रहे आते हैं मुनिराज को वंदन करने के लिए, देवलोक में से देव आते हैं, इंद्र आते हैं, आ सकते हैं। रजकन के ऋद्धि वैमानिक देव ने सर्वे माया पुद्गल एक स्वभाव, एक पुद्गल स्वभाव, मिट्टी और सोना में कोई फर्क नहीं, जीवित के मरने नहीं न्यूनाधिकता, जीवन हो मरण हो कोई कमी वैसी हमें नहीं मालूम, देह साथ रहे देह साथ छोड़े हमें कोई उसका कोई नफा नुकसान लाभ नुकसान कोई दिखता ही नहीं,
चेतन भूला अलग हो
गया, ऐसा भिन्न हो गया है। ऐसे वैराग के वैराग में वो झूलते हैं, वो तीर्थंकर भी दीक्षा के पहले जिसका चिंतन करते हैं तो तीर्थंकर दृढ़ होते हैं, वो भी दीक्षा पहले बार भावना का चिंतन करते हैं, वो कहते हैं वो भी दीक्षा के पहले जिसका चिंतन करते हैं। ऐसे वैराग्य रस रे रस, वैराग्य रस से रस बस्ती, वैराग्य भाव से जो सराबोर है, ऐसी ये बार भावना है भाते, किसी भव्य को आनंद न हो कैसे, किस भव्य जीव को आनंद नहीं आएगा,
सबको आनंद आएगा,
बार भावना सबको पसंद पड़ती है, वो तो अलग अलग विषय की अपेक्षा से बार भावना है, एक विषय से लिवे तो अपने स्वरूप की ही भावना है, आत्मस्वरूप की भावना प्रारंभ से लेकर के मनमुनि दशा तक चलती है, प्रारंभ से लेकर के मुनि दशा तक आत्मस्वरूप की भावना जो है वो चलती है आती है। ऐसे वैराग्य रस से रस बस्ती, मैंने भीगी हुई वैराग्य रस से भीगी हुई ये बार भावना भाने के वक्त कौन से ऐसा भव्य है जिसको आनंद न हो, उसको आनंद आएगा ही आएगा। राग में दुख है, राग छोड़ने में वितरागता में तो सुख और आनंद है ही, तो किसको आनंद नहीं होगा। और कौन सा भव्य को मोक्ष मार्ग का उत्साह नहीं जागृत होगा, ऐसा कौन सा भव्य होगा कि जिसको मोक्ष मार्ग में और उत्साह बढ़े उमंग बढ़े, ऐसा किसको नहीं होगा। मैंने भव्य मैंने रुचि वाला लेता है, जिसको रुचि होती है उसको अपने विषय में, रुचि वाले को अपने विषय में उत्साह आए बिना रहता नहीं, ये रुचि का तो चिन्ह है लक्षण है। जिस विषय की रुचि होती है उस विषय में उत्साह आए बिना रहे नहीं, तो जिसको अपने शुद्धात्म स्वरूप की रुचि है, जिसको निर्दोषता की और पवित्रता की रुचि है, जिसको गुण की रुचि है, गुण से उत्पन्न होने वाले सुख सुख की रुचि है, विषय कषाय से उत्पन्न होने वाले सुख की रुचि जिसको नहीं है और गुण से उत्पन्न होने वाले सुख की रुचि है, उनको तो मोक्ष मार्ग में उत्साह आएगा ही आएगा। ये तो मुनिराज की स्थिति बताई, तो मुनि दशा में तो ये कहा भगवान कुंद आचार्य ने अष्टपाहुर में कि वैसे तो आत्मा अरूपी तत्व होने से इनके सब परिणाम भी अरूपी होते हैं, रूपी पदार्थ के परिणाम रूपी होते हैं जो इंद्रिय ज्ञान से ज्ञान गोचर होते हैं, लेकिन अरूपी आकाश कारण धर्मास्थिकाय धर्मस्थिकाय जीव पांच अरूपी पदार्थ हैं, इसके परिणाम भी अरूपी होते हैं, जिसको रूप रस गंध वर्ण शब्द ऐसे पर्याय
नहीं है
नहीं होते, फिर भी ये मोक्ष मार्ग है, ये आत्मा के अरूपी परिणाम होने के बावजूद भी अगर आपको मूर्तिमंत कोई मोक्ष मार्ग का दर्शन करना हो तो ये मुनिराज का दर्शन
करो,
ऐसा कहते हैं क्या। कि ये मुनि दशा तो आत्मा के रूपी परिणाम है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा के रूपी परिणाम नहीं है, रूपी परिणाम है वो इंद्रिय ज्ञान से समझ में देखने में नहीं आते हैं। फिर भी एक मुनि दशा ऐसे दशा है, अंतर बाह्य इंद्र ग्रंथ दशा होने से, और इनके आत्मा के गुण इतने प्रसिद्ध हुए हैं कि उनके अंग अंग में ये झलकती है, नित्राकता प्रसिद्ध होती है। तो भगवान कुंदकुंद आचार्य ने ऐसा कहा कि अमूर्ति मोक्ष मार्ग को मूर्ति के रूप में देखना हो तो ये जैन मुनि है, इसमें आपको मूर्तिमंत मोक्ष मार्ग का दर्शन होगा, ऐसा देखा। बहुत सुंदर है दर्शन, बहुत शुरू में ही पाठ किया। ऐसे मुनि को देखते हुए भव्य जीव को मोक्ष मार्ग में उत्साह जागृत होता है, अपनी भावना प्रबल होती है कि मेरी भी ऐसे वितराग शांति सुख की दशा कब हो, ऐसी भावना और उत्साह उसमें जागृत होता है। ऐसे यहाँ गुरुदेव ने मुनिराज के भक्ति की है और अपनी ऐसी भावना के लिए भाव व्यक्त किए हैं।
बार भावना का प्रकरण जरा आपसे सुनने का है, श्रीमद में 72 पाने में 35 पाने में अलग अलग बार भावना श्रीमद में। हाँ देखिए बहुत देर प्रकरण आया है तो सुनो।
मोक्ष माला चलती है, भावना बोल भावना बोल शुरू किया
आगे।
द्वादश नाम प्रेक्षा स्वरूप दर्शन, चाहे जैसे तुच्छ विषय में प्रवेश करते हुए भी उज्ज्वल आत्माओं का स्वतः विवेक वैराग्य में जमकलाना कूदना ऐसा ही होता है। श्रीमद रायचंद्र जी की 17 साल की उम्र में इस भावना बोध को लिखा हुआ है, छोटी सी किताब रखी मोक्ष माला और भावना बोध, छोटी दो किताब छोटी उम्र में लिखी है। तो कहते हैं, शुरू करते हैं कि चाहे जैसा तुच्छ विषय हो, उज्ज्वल आत्मा पवित्र आत्मा है, कोई भी विषय को स्पर्श करते हैं वो वैराग्य में चले जाते हैं। बाह्य दृष्टि से जब तक उज्ज्वल आत्मा हो, आत्मा संसार के मायिक प्रपंच में दर्शन देते हैं, वहां तक उस कर्तव्य की सिद्धता क्वचित दुर्लभ है। क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा दृश्य अवस्था में होते हैं तो है तो उज्ज्वल पवित्र है, फिर भी संसार के मायिक प्रपंच में वो दिखते हैं। संसार के कार्य को क्या कहा,
माई
प्रपंच में वो दर्शन देते हैं, वहां तक वो पवित्र है उज्ज्वल है। ऐसा बड़े एक मधुमत हाथी तक के सगले सब प्राणी मानवी देवदानवी ये सब सबकी स्वाभाविक इच्छा सुख और आनंद प्राप्त करने की है, इसमें कोई शंका
नहीं है।
इसलिए वे कहीं न कहीं उद्यम करते रहते हैं, उसमें लीन रहते हैं, संलग्न रहते हैं, किसी न किसी प्रकार के सुख के कारण, सुख प्राप्त करने के कारण किसी न किसी प्रकार के उद्यम में वो संलग्न रहते हैं। किंतु विवेक बुद्धि का बिना विवेक सुख प्राप्त करने के लिए सुख ही मिले ऐसा विवेक, बिना विवेक वो भ्रम को प्राप्त होते हैं, इस उद्यम में वो भ्रम में प्राप्त होते हैं और अनेक प्रकार संसार में अनेक प्रकार के जो प्रसंग है उसमें सुख का आरोप करते हैं कि हमको यहाँ से सुख मिलता है, कोई बोलता है कि हमको ऐसे सुख मिलता है, कोई बोलता है हमको ऐसे सुख मिलता है। अति अवलोकन से ऐसा सिद्ध है कि ये सभी आरोप प्रथा है। बहुत विचार करने से ये बात सिद्ध हुई है, क्योंकि कोई कहते हैं कि हमको नहाने में सुख है, हम तो समुद्र के किनारे सारे दिन पड़े रहेंगे नहाएंगे, कोई कहते हैं कि हमको नहाने में दुख है, पानी में जाते ही हमको तो सर्दी जुकाम लगता है, कफ हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, कोई किसी कहाँ आरोप करते हैं सुख के लिए, कोई कहाँ आरोप करते हैं। बहुत विचार करने से ये पता चलता है कि सुख का साधन होता तो हरेक के लिए होता, लेकिन ऐसा ये आरोप रखा है। इस आरोप को अनारोप करने वाले विरल मानवी विवेक के प्रकाश से अद्भुत भी अन्य विषय प्राप्त करता कहते आए हैं कि ये सुख सभी सुख भय से घिरा हुआ है। जैसे पैसा मिलता है तो उसमें भी भय है, तंदुरुस्ती मिलती है तो रोग का भय है, रूप मिलता है तो दूसरे से ईर्ष्या होने का भय है, मान मिलता है तो दूसरे की ईर्ष्या होती है इससे भय है, पैसा लूटा जाना, चुरा जाना, डकैती होना, कुछ भी होना,
भय रहता,
सब में भय है, सब भय से ग्रसित है। और जहां भय होता है वहां दुख होता ही है। ये सब सुख भय के साथ है, लेकिन इसलिए सुख नहीं है किंतु दुख ही है। जो वस्तु प्राप्त करने में महाताप है, ताप है मैंने जो त्रास होता है, जो वस्तु भोगने में इससे विशेष त्रास होता है, और जो जिसके फल स्वरूप महाताप, अनंत शोक और अनंत भय है, इस वस्तु को जो सुख है तो वो नाम मात्र सुख है, वास्तव में वो सुख
नहीं है।
ऐसे होने से मेरे की जीवित में ऐसे पदार्थों में अनुरक्तता नहीं करते, संसार के प्रत्येक सुख बड़े विराजित जो राजेश्वर हैं वो भी तत्वज्ञान के प्रसाद प्राप्त होने से, थोड़ा बहुत यथार्थ तत्वज्ञान मिलने से तो राजा जी का त्याग करके परमानंद प्राप्त करने के लिए मुनि दशा को अंगीकार करते हैं, ये बात उन्होंने मान ली। यहां से लेकर के फिर वो बार भावना पर आते हैं। सारांश ये है कि मुक्ति, मैंने संसार के दुख से मुक्त होना और जिसके फल स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान, परमानंद आदि अनुपम दशा की प्राप्ति करना, जिसमें परम सुख और परमानंद का अखंड निवास है, जिसमें जन्म मरण के विटंबनाओं का अभाव है और शोक और दुख का जिसमें क्षय हो गया है, ऐसे विज्ञानी विषयों का विवेचन, ऐसे ऐसे विज्ञानमय साइंस जिसको कहते हैं, ऐसे विषय का विवेचन हम आगे करेंगे। वो ग्रंथ लिखते हैं, इस विषय का विवेचन
आगे करेंगे,
आगे करेंगे। परंतु बिना किसी विवाद ऐसा मान्य रखना चाहिए कि अनंत शोक और अनंत दुख की निवृत्ति कोई संसार के विषय से होती नहीं। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं कि जिससे ये आनंद शोक और दुख की और भय की निवृत्ति हो गए, ऐसी संसार में कोई चीज नहीं,
नहीं।
इसमें कोई विवाद का विषय है
नहीं।
रुधिर से लोह का दाग नहीं जाता, लोह का दाग पड़ता है और लोह से
नहीं जावे,
लोह से नहीं धोया जाता, लेकिन जल से उसका अभाव होता है। वैसे श्रृंगार से व श्रृंगार विसरित धर्म से संसार की निवृत्ति नहीं होती। जिस श्रृंगारिक वृत्ति से संसार की प्रवृत्ति होती है, उसी श्रृंगारिक वृत्ति से धर्म और धर्म की प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए ही वैराग्य जल की आवश्यकता निसंशय रूप से सिद्ध होती है। और यही इसलिए ही वीतराग के वचन में अनुरक्त होना उचित है। इसलिए वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के वचन में अनुरक्त होना, मैंने विशेष अनुरक्त होना उचित है। और इसका फल ये है, निदान ये है कि इससे विषय विष का जहर का जन्म नहीं होता और परिणाम उसका मुक्ति ही है। इस वितराग सर्वज्ञ के वचन को विवेक बुद्धि से श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें और ऐसा करके हो हे मानवी अपनी आत्मा को उज्जवल कर, अपने आत्मा को पवित्र कर। कैसी शैली है?
बहुत सही।
17 साल की उम्र में इनकी ये शैली है।
1 और 7 17
करोड़ में ऐसा उत्तम होता है कि बचपन में जिसकी प्रज्ञा विशेष इतनी हो कि जो सारे संसार को उपदेश देने में काबिल हो, ऐसा। अभी वैराग्य बोधिनी कितनी की भावना है, दो बार भावना है। वो कहते हैं वैराग्य और आत्महितैषी विषयों की सुदृढ़ता होने के लिए बार भावनाओं को तत्वज्ञानी कहते हैं, बताते हैं, दर्शाते हैं। पहली है अनिल की भावना। शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुंब, परिवार आदि सर्व विनाशिक हैं। जीव का मूल धर्म अविनाशीपना है।
वाँ वाँ।
जीव शाश्वत है, उसका कभी नाश होता
नहीं।
ऐसा चिंतन करना वो अनित्य भावना है। क्या कहा? अनित्य में अकेले अनित्य संयोग की चर्चा नहीं की, नित्य ऐसा अपने स्वरूप की मुख्यता करके उसकी अनित्यता कही। जैसे सुमित दृष्टि चक्रवर्ती होता है तो उनको ये दिखता है कि ये तो 4 दिन की भी चांदनी नहीं है, अनंत काल में शाश्वत हूं, अनादि अनंत रहने वाला पदार्थ हूं। इसमें ये मनुष्य भव का जो भी आयु है वो आयुष तो 4 दिन की चांदनी भी
नहीं है।
तो उनको अपनी नित्यता पूर्वक उस अनित्यता का परिज्ञान होता है, इसलिए उसमें उसको रस ज्यादा नहीं आता है। और मात्र संयोग को ही, देह को ही पूरा जीवन मान ले, उतना ही जीवन को समझे, वो तो झोंपड़ी में या गुदड़ी में भी इतना चौड़ जाएगा, फटी हुई गुदड़ी होगी तो भी उसमें इतना चौड़ जाएगा कि सारी दुनिया उसमें मान देखेगी। और चक्रवर्ती को अनित्य इतना दिखता है कि इसमें क्या रस है। जहां निवास से थोड़ा काल करना है, धर्मशाला में ठहरते हैं क्या, सुबह आया शाम को तो निकल जाना है, फिर ठहरने के लिए थोड़ा सफाई कर लेने, लेकिन रंग रोगान ऑइंटमेंट वो क्या करना बैठेगा, शाम को तो निकल जाना है, उसमें उसको रस आता
नहीं
है। चाहे धर्मशाला कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जहां ठहरना नहीं है उसमें रस कैसे आएगा,
नहीं आता।
साथ ही अशरण भावना ली कि संसार में मरण समय जीव को शरण देने वाला कोई नहीं, न पैसा शरण देता है, न परिवार शरण देता है, न इज्जत आबरू कीर्ति कोई शरण देती है, न कोई शस्त्र अस्त्र मंत्र तंत्र कोई शरण
नहीं देता
देता है, अरे ऊपर से कोई देव आके भी शरण
नहीं देता
नहीं देता है। इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र कोई शरण दूत होते
नहीं,
कोई जिनेंद्र भी आकर के उनको मरण आयुष को पूर्ति करे ऐसा कोई बनता है क्या?
नहीं बनता,
वो तो अपनी भी आयु खत्म होते हुए चले जाते। भगवान ऋषभदेव की आयु 84 करोड़ पूर्व की थी और भगवान महावीर स्वामी के 72 साल के, कितना फर्क। तो अपनी आयु भी नहीं बढ़ाते, दूसरे की बढ़ाने का तो सवाल ही पैदा
नहीं
होता। संसार में मरण समय जीव को शरण रखने वाले कोई मात्र एक पवित्र धर्म ही इसका शरण है, सत्य शरण है, जिसके आधार से वो मरण के दुख को अनुभव नहीं करता। मरण तो होता ही नहीं, लेकिन मरण होए ऐसे मरण तुल्य दुख का अनुभव नहीं करता है, जो सही समझ में ऐसा अनुभव नहीं होता। इसका चिंतन करना ये दूसरी अशरण भावना है। तीसरी कि इस आत्मा को समुद्र संसार समुद्र में पर्यटन करते हुए परिभ्रमण करते हुए सभी प्रकार के भव प्राप्त किए, कोई भव बाकी नहीं है,
नहीं है।
एक अपेक्षा उतनी भी थी, जो समय दृष्टि को जो पद मिलता है
वो नहीं मिलता,
वो नहीं मिलता है। जैसे कि सर्वार सिद्धि में जाते हैं वो, बाकी मिथ्या दृष्टि को जितना भी देवलोक नवमी ग्रह पर्यंत का मिलता है वो सब भोग मिल चुका। ऐसे संसार की जंजीर से मैं कब छुटूंगा, ये संसार मुझे नमो मैं मोक्षमयी हूं, ऐसा चिंतन करना वो तीसरे संसार से छूटने के लिए संसार भावना है। संसार भाने के लिए संसार भावना
नहीं है,
छूटने के लिए संसार भावना है। एकत्व भावना, मेरा आत्मा अकेला है, मैं अकेला आया, मैं अकेला जाऊंगा और मैं जो भी कर्म किया है अकेला ही उसका फल भोगूंगा, ऐसा अंतकरण से चिंतन करना ये चौथी एकत्व की एकत्व भावना है।
एकत्व भावना
वो जीव अकेला पैदा होता है, मरता है तो अकेला, मोक्ष में जाता है तो अकेला, धर्म प्राप्त करता है तो अकेला, और पुण्य पाप करके उसका फल भोगता है तो
अकेला
ही भोगता है, ये वास्तविकता है। ऐसी भाव चिंतन करना वो एकत्व भावना है। अन्यत्व भावना, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ऐसा चिंतन करना वो पंचमी अन्यत्व भावना है। कोई किसी का नहीं है, परिवार तो परिवार भी कहने की चीज है, वास्तव में कोई किसी का होता
नहीं
है, क्योंकि हरेक आत्मा है वो स्वतंत्र पदार्थ है। कोई आत्मा से कोई अन्य आत्मा पैदा नहीं होता,
नहीं होता।
इसलिए कोई आत्मा किसी का पितृ पुता हो, जनक जननी हो, ये बात कहने मात्र है, वास्तव में ऐसा होता
नहीं।
निराजी है तो परिवार को छोड़ दिया, फिर भावना निराजी है परिवार को छोड़ दिया, फिर भी उसकी भावना 12 भावना
फिर भी वो उसको देख, ये विकल्प आता है कि संसार में कोई किसी का नहीं, मेरा भी कोई नहीं है, वो अपने मुनि दशा में तो टिकते कि नहीं
टिकते हैं,
तो अविचल रहते हैं, विचलित नहीं होती है, ऐसी भावना से। वरना तो जंगल में जाए और घर को याद करे, ये हो जाएगा वैराग्य नहीं हुए। तो जो भोग उपभोग भूतकाल में भोगे हैं उनकी स्मृति आ जाएगी। जोर से तो ये क्या कि हमको आगे भोग उपभोग में नहीं जाना है, लेकिन जो पूर्व में भोगे हुए उसकी स्मृति आ जाएगी। संसार में कोई किसी के
नहीं है
ऐसा, उनको भी विकल्प पाता है। ये शरीर अपवित्र है, अशुचि भावना,
अशुचि।
ये शरीर अपवित्र मलिन है, मलमूत्र की खानी है, रोग और वृद्धावस्था का निवास धाम है। ऐसे शरीर से मैं भिन्न हूँ, पवित्र मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन करना वो छठ की अशुचि भावना,
अशुचि भावना,
आश्रव भावना। राग द्वेष अज्ञान मिथ्यात्व इत्यादि के सर्व आश्रव है और ये आश्रव दुखदायक है, ऐसे चिंतन का कारण है, जीव को बंधन में डालता है, ऐसे चिंतन करना वो सातवीं आश्रव भावना है, संवर भावना है। ज्ञान ध्यान में प्रवर्तमान, ज्ञान ध्यान में प्रवर्तमान होकर के जीव नए कर्म को नहीं बांधते। ज्ञान ध्यान में प्रवृत्ति होने से नए कर्म आने को रुक जाते हैं, उसको संवर कहते हैं। ऐसा संवर प्राप्त हो उसको संवर भावना कहते हैं, जिसका मूल उपाय भेद ज्ञान बताया।
भेद ज्ञान
निर्जरा भावना, ज्ञान सहित क्रिया करना, निर्जरा का कारण है क्रिया मैंने संयम तप। ज्ञान समेत आत्मज्ञान सहित स्वसंवेदन पूर्वक स्वरूप में स्थिर रहने की क्रिया होए और उपयोग स्वरूप में स्थिर हो जाने से बाह्य क्रिया कुछ नहीं होए, मन वचन काया के, ऐसा अपने आत्मा को चिंतन में लेना, ऐसी भावना करना, इसको निर्जरा भावना कहते हैं। लोक स्वरूप भावना, चौग राजलोक का स्वरूप चिंतन करना, वो दसवीं लोक स्वरूप भावना है। तीन लोक है ऊपर के, देव लोक मनुष्य लोक, इनसे नरक आदि का विचार करना, ये लोक स्वरूप भावना है। ये तीनों लोक में कर्म के भोग्य स्थान है, जहाँ अपने अपने कर्म को भोगने के लिए जीव उत्पन्न होते हैं। बोधि दुर्लभ भावना, संसार में परिभ्रमण करने वाले आत्मा को सम्यक ज्ञान की प्रसादी प्राप्त होना दुर्लभ है। सम्यक ज्ञान की प्रसादी है, थोड़ा भी संसार में परिभ्रमण करते आत्मा को सम्यक ज्ञान की प्रसादी प्राप्त होना दुर्लभ है।
दुर्लभ है,
या सम्यक ज्ञान प्राप्त होना दुर्लभ है,
दुर्लभ है।
तो फिर चारित्र सर्वकीर्ति परिणाम रूप धर्म पाना तो इससे बहुत दुर्लभ है। ऐसा चिंतन होना ये ग्यारहवीं बोधि दुर्लभ भावना है। धर्म बहुत दुर्लभ है, लाखों करोड़ों में किसी को ही प्राप्त होता है, निरल जीव को प्राप्त होता है, इसलिए उसको बोधि दुर्लभ कहा है। तो संख्या की अपेक्षा से रुचि वाले को तो आत्मस्वरूप की और आत्महित की जिसको रुचि हो, गुण की रुचि हो, पवित्रता की रुचि हो, उसको धर्म प्राप्त करना, धर्म प्राप्त होना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त होना, ये कोई दुर्लभ है नहीं, उसके लिए सुलभ है। ये बात भी आती है कि इसके लिए सुलभ है, संख्या की अपेक्षा बहुत कम लोगों को ये प्राप्त होता है, इसलिए दुर्लभ बताया। धर्म का उपदेशक धर्म दुर्लभ भावना है, बाद में धर्म दुर्लभ भावना बुद्धि दुर्लभ, ये धर्म दुर्लभ ऐसा कहा। धर्म के उपदेशक और शुद्ध शास्त्र का बोधक ऐसे गुरु और उनका श्रवण मिलना ये दुर्लभ है, ऐसा चिंतन करना, ऐसा विचार करना, ये बाद में धर्म दुर्लभ भावना है। ऐसे मुक्ति साध्य करने, मुक्ति को साध्य करने के लिए जो वैराग्य की आवश्यकता है, उस वैराग्य को दृढ़ करने वाली बार भावनाओं में से कितनी भावनाओं का दर्शन अंतर्गत वर्णन करेंगे, तरीके का वो कथा लिया है, कितनी भावनाओं कितने विषय में बांटी है, कितनी भावनाओं मत अन्य प्रसंग अगत्य है, इसलिए इनका यहाँ विस्तार नहीं किया है। ऐसा करके फिर एक एक भावना का चित्रण किया कथानुरूप के।
जय विश्वास दिगंबर जय नारायण।